सुमित की बात सुनकर आकाश बोला था, हम अरमान के दुश्मन नहीं हैं सुमित, हम तो उससे यही पूछने गए थे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, मामला क्या है, उसने गुस्से से कहा। लेकिन नहीं, उसे तो आदत हो गई है ना हर एक प्रॉब्लम और हर एक मामले को अकेले हैंडल करने की। आकाश ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, देखा नहीं था तुमने, अरमान की याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ अकेले हैंडल किया। सम्राट और राजवीर जैसे खतरनाक इंसान से वो अकेले लड़ता रहा। राजवीर से सच उगलवाने के लिए उसने किस तरह का नाटक किया, आस्था की मौत का भी नाटक किया। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, अरमान को अब हमारी जरूरत ही नहीं है सुमित, तुम मानो या ना मानो। सुमित अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर खड़ा अरमान, जो कब से हाथ बांधकर उनकी बातें सुन रहा था, अपनी डाक और भारी आवाज में बोला, किसने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसकी आवाज सुनते ही दोनों का ध्यान दरवाजे की ओर गया। अरमान वहीं खड़ा होकर कड़ी आवाज में बोला, किसने कहा कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है आकाश। जैसे ही अरमान वहां आया, आकाश तुरंत मुंह फेरकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल अरमान अंदर आया और सीधा आकाश को गले से लगा लिया। ये देखकर सुमित के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता था जब अरमान खुलकर अपने इमोशंस दिखाता था। अरमान को इस तरह देखकर आकाश भी थोड़ा नरम पड़ गया। फिर भी वो बोला, तुम यहाँ क्या करने आए हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तभी अरमान ने आकाश का हाथ पकड़ा और अपने गिरेबान पर रख दिया, फिर मुस्कुराकर बोला, जिस तरह मैंने तुम्हारा गिरेबान पकड़ा था, तुम भी पकड़ लो, हिसाब बराबर। अरमान का ये रिएक्शन देखकर आकाश और सुमित दोनों ही हैरान रह गए। आकाश ने तुरंत अपना हाथ उसके गिरेबान से हटा लिया, फिर बिना कुछ कहे उसे कसकर गले से लगा लिया। वो धीरे से बोला, देखो अरमान, तुम मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर हो, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमेशा मेरी ये बात याद रखोगे। तब अरमान ने सहमति में अपना सिर हिलाया और एक बार फिर आकाश को गले लगा लिया। तभी सुमित भी आगे बढ़ा और दोनों को हग कर लिया। ठीक उसी वक्त ध्रुव और आहान, जो आकाश से बात करने के लिए कमरे की ओर जा रहे थे, वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, दोनों खुशी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी आहान हंसते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ तो भरत मिलाप भी हो गया, और वो भी हमारे बिना। ये बोलकर वो तुरंत आगे बढ़ा और सीधा उन तीनों के गले लग गया। फिर मुस्कुलाते हुए बोला, भाई मजा ही आ गया, मुझे तो लगा था कि न जाने अब क्या होगा, फाइनली दिल को थोड़ा सुकून मिला है। फिर वो आकाश की ओर देखकर बोला, थैंक यू सो मच आकाश भाई, अगर आप सच में चले जाते तो मेरा क्या होता, और वैसे भी अभी तो आप नए नए पापा बने हैं, आपको तो अभी बच्चे को संभालना भी ठीक से नहीं आता, लेकिन मुझे सब आता है, नानी माँ से मैंने सब सीख लिया है। अरे मैं अपनी प्रिंसेस और चैंप का पूरा ध्यान रखता हूँ, उन्हें कब खाने की जरूरत होती है, कब पीने की जरूरत होती है, कब उसे सुलाना होता है, सब कुछ जानता हूँ, मैं तो अब परफेक्ट हो गया हूँ। और फिक्र मत करिए, आपका बच्चा भी मैं ही संभाल दूंगा, इसलिए घर छोड़कर जाने के बारे में तो आप सोचना भी मत। आहान के मुंह में जो आ रहा था वो लगातार बोले जा रहा था। उसे देखकर ध्रुव हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ, पहले अच्छी तरह सब बच्चों की प्रैक्टिस कर ले, ताकि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तब गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और उसे एक परफेक्ट नैनी चाचू मिल जाए। ये सुनकर आहान ने बड़ी बड़ी आंखें करके ध्रुव को घूरा, फिर बोला, क्या कहा तुमने, तूने मुझे नैनी चाचू कहा, रुक अभी बताता हूँ तुझे। ये बोलकर आहान उसके पीछे भागने लगा और ध्रुव हंसते हुए कमरे से बाहर भाग गया। वो कभी आकाश के पीछे छुप जाता, कभी अरमान के पीछे और कभी सुमित के पीछे। इसके बाद वो दौड़ता हुआ सीधे हॉल की तरफ भागने लगा। उसे देखकर आकाश और सुमित हंस पड़े, वहीं अरमान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। और इसी तरह ध्रुव आगे आगे भाग रहा था और आहान उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था। उधर हॉल में कुछ देर पहले तक सभी लोग मायूस बैठे हुए थे। सबके मन में यही चल रहा था कि आखिर आकाश ने जाने की बात क्यों कही थी, लेकिन अब जब उन्होंने ध्रुव और आहान को इस तरह भागते दौड़ते देखा तो सभी हैरान रह गए। ध्रुव भागते भागते सीधा नानी माँ के पीछे जाकर छुप गया, फिर जोर से बोला, नानी माँ बचाइए मुझे। आहान भी वहीं पहुंच गया और बोला, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। तभी आस्था बीच में आकर बोली, क्या हुआ आप लोगों को, आप लोग बच्चों की तरह क्यों डर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। आहान तुरंत बोला, जो भी पूछना है इसी से पूछो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। वहीं अब सभी लड़कियों को लगा कि कहीं इन दोनों के बीच कोई झगड़ा ना हो गया हो, क्योंकि जिस तरह कुछ देर पहले आकाश ने जाने की बात कही थी उसके बाद से सभी के मन में डर बैठ गया था। आस्था भी थोड़ा घबरा गई, वो तुरंत बोली, प्लीज आप लोग बता दीजिए ना हुआ क्या है। तभी रौनक बीच में आ गई और बोली, क्या हुआ है आहान। आहान रौनक को देखकर बोला, आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, आज तो मैं इसका मार मार कर भरता ही बना दूंगा, हट जाओ सब, आज मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। आहान की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। उधर वंशिका ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा, ध्रुव आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने, बोलो हुआ क्या है। वंशिका की बात सुनकर ध्रुव मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, यार मैंने तो इसे बस एक छोटी सी बात कही थी, मुझे क्या पता था कि ये अपने ईगो पर ले लेगा। अब छोटी सी बात सुनकर सभी कंफ्यूज होकर ध्रुव की ओर देखने लगे थे। आस्था हैरानी से बोली थी, ध्रुव ऐसी कौन सी छोटी सी बात बोल दी थी तुमने, हाँ बताओ तो सही, हुआ क्या है? तभी नानी माँ भी उत्सुकता से बोली थी, हाँ हाँ बेटवा, अब तुम लोग बताओगे भी कि हुआ क्या है? फिर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, और अगर तुम लोग इसी तरह हमारे आगे पीछे भागते दौड़ते रहे तो हम तो तुम्हारे चक्कर में बेहोश होकर गिर जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? हमारी तो बूढ़ी हड्डियां हैं, इस उम्र में हमारी हड्डियां जुड़ी थी भी नहीं। नानी माँ की बात सुनकर ध्रुव और आहान थोड़ा सा शांत हुए, लेकिन तब तक रश्मि और अरमान भी नीचे आ गए थे। इतना ही नहीं, हॉल में हो रहे शोर शराबे को सुनकर अविनाश भी वहाँ आ गया था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था। तभी दादाजी भी वहाँ आ गए। अब सब लोगों को अपनी ओर देखते हुए पाकर आहान तुरंत बोला, आप सब लोग मुझे इस तरह घूर घूर कर मत देखिए, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती ध्रुव के बच्चे की है और मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सभी और भी हैरान हो गए। तभी अभिमान और वसुंधरा भी वहाँ आ गए। अभिमान मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा आखिर हुआ क्या है, पहले बताओ तो सही, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तुम लोग पहले से ही जज बनकर फैसला सुनाने क्यों लगे हो? अभिमान की बात सुनकर आहान ने मुंह बनाया और बोला, देखिए ना पापा जी, ये ध्रुव का बच्चा कह रहा है कि मैं इसके बच्चे की चाचू नैनी बनूंगा। अब आप ही देखिए मेरा इतना हैंडसम चेहरा क्या नैनी जैसा लगता है? मैं बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है और मुझे उनकी देखभाल करना भी आता है, और ये मुझे नैनी बता रहा है, इसे तो मैं आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आहान ने बचकाने और फनी अंदाज में ये कहा, अचानक उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तब राधिका भी हंसते हुए बोली, आहान प्लीज तुम ध्रुव की बातों का बुरा मत मानो, लेकिन हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बच्चा भी अब इस दुनिया में आने वाला है, तो क्या प्लीज तुम मेरे बच्चे की भी नैनी चाचू बन जाओगे? जैसे ही राधिका ने ये कहा, सभी लोग एक बार फिर जोर से हंस पड़े। तभी सुमित आगे आया और आहान को गले लगाते हुए बोला, बस राधिका अब मेरे छोटे भाई को ज्यादा परेशान किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सुमित की बात सुनकर राधिका हंसती, वहीं आहान एकदम हैरान रह गया, क्योंकि सुमित बहुत कम मौकों पर अपने इमोशंस दिखाया करता था। आहान ने तुरंत सुमित को देखकर कहा, सुमित भाई आप तो सच में मोती निकले, मैं तो आपको आज तक सिर्फ खड़ूस और डरावना समझता था, लेकिन वाकई में आप तो बहुत अच्छे निकले। थैंक यू सो मच भाई, इतने सारे लोगों में मेरा सपोर्ट करने के लिए। वहीं आस्था गहरी नज़रों से अरमान को देखने लगी थी। उसने ये भी देख लिया था कि इस वक्त आकाश और अरमान के बीच सब कुछ फिर से सामान्य हो चुका था। ये देखकर कहीं ना कहीं आस्था ने राहत की सांस ली। मन ही मन उसने कान्हा जी से दुआ की कि ये सभी हमेशा इसी तरह एक साथ रहें। फिलहाल तभी अबीर, प्रियंका और वीर भी अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे। क्योंकि आस्था के दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने भी वापस जाने का अपना फैसला टाल दिया था। लेकिन तभी डॉक्टर वहां आया और उसने बताया, दादाजी को होश आ गया है। ये सुनते ही अचानक अरमान के माथे पर पसीना छलक आया। उसकी धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन आस्था बिना एक पल गमाए सीधे अविनाश के साथ मिनी हॉस्पिटल की ओर चली गई। इतना ही नहीं, खबर मिलते ही लगभग सभी लोग आस्था के दादाजी से मिलने के लिए मिनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। फिलहाल जैसे ही आस्था ने अपने दादाजी को देखा, वो तुरंत उनका हाथ थामकर उनके पास बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो भावुक होकर बोली, दादाजी आपको पता है हम कितना ज्यादा घबरा गए थे, हम आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं देख सकते, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं दादाजी। ये बोलते बोलते आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दादाजी ने अपनी टूटी हुई और कमजोर आवाज में उसे शांत रहने के लिए कहा। फिर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी तुम्हारे दादाजी अभी जवान हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। दादाजी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके बाद एक एक करके सभी लोग उनसे मिलने लगे। नानी माँ भी आगे बढ़ी। वहीं अधिराज जी ने गहरी नजरों से नानी माँ को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हों, जैसे कि उन्होंने उन्हें कहीं पहले देखा हो, लेकिन याद नहीं आ रहा हो कि कहाँ। फिलहाल इस वक्त औपचारिक अभिवादन और हालचाल पूछने के बाद नानी माँ ने धीरे से उनकी ओर देखा और गहरी सोच में डूब गईं। क्या अरमान का अनजाना डर सच हो जाएगा? क्या आस्था अरमान को छोड़कर चली जाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM पर तेरे इश्क में।